अरुणिमा उठकर खड़ी हुई और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। वो आस्तिक का पीछा कर रही थी। हर रात आस्तिक कहीं चला जाता था और अरुणिमा को ये जानने की बेचैनी हो रही थी कि उसका पति हर रात जाता कहाँ है। शायद आस्तिक ने आज भी कुछ ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। आस्तिक एक गवियारे से होते हुए दूसरे गलियारे में जा रहा था और अरुणिमा उससे थोड़ी दूरी से उसका पीछा कर रही थी। सच में ये महल बहुत बड़ा था। अरुणिमा ने तो इस महल को कभी पूरा देखा ही नहीं था। उसे तो अपने कमरे और कीर्ति के कमरे का पता करने में भी दो दिन लग गए थे। पृथ्वी और प्रणाली के कमरे के बारे में तो वो अभी तक भी कुछ नहीं जानती थी। ये महल महल नहीं, बिल्कुल भूल भुलैया था और अरुणिमा को यहाँ पर खो जाने का डर हमेशा रहता था। अरुणिमा ने देखा कि आस्तिक महल के बिल्कुल पीछे के हिस्से में आ गया था और गलियारे के बिल्कुल अंतिम वाले कमरे में चला गया था और अरुणिमा को ये जगह जानी पहचानी सी लगी। लेकिन इतने बड़े भूल भुलैया में वो पहले कहाँ से आई थी और अब कहाँ जा रही थी, उसे खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस्तिक ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, पर वो ठीक से बंद नहीं हुआ था और सिर्फ ज़रा सा कोना खुला रह गया था। अरुणिमा उस बंद दरवाजे के पास आई और उस दरवाजे के अंदर से झांकते हुए अंदर देखने की कोशिश की। अरुणिमा ने देखा ये एक खाली कमरा था जहां पर सिर्फ एक पियानो रखा हुआ था। आस्तिक पियानो के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियों से पियानो पर खन बजाने लगा। लग जा गले फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। अरुणिमा इस धुन को पहचानती थी, ये बहुत पुराना गाना था, लेकिन इस धुन को बजाने का तरीका जो आस्तिक ने अपनाया था वो सच में बहुत डरावना था। आस्तिक का पूरा चेहरा इस समय दर्द और तकलीफ से भरा हुआ था और पियानो पर चल रही उसकी उंगलियां इस बात को साबित कर रही थीं। अरुणिमा बस आस्तिक के उस दर्द भरे चेहरे को देख रही थी। वो इंसान जो उसके सामने किसी मॉन्स्टर की तरह लगता था, आज उसका चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह तकलीफ से भरा हुआ लग रहा था। तभी अरुणिमा की नज़र आस्तिक के हाथ पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आस्तिक की उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन उसके हाथ पियानो पर रुक ही नहीं रहे थे। आस्तिक की आंखें बंद थीं और उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे और अरुणिमा को लगा शायद उसे भ्रम हुआ है। ये इंसान हमेशा दूसरों को रुलाने में जिसे खुशी मिलती है वो खुद नहीं रो सकता है, लेकिन अरुणिमा सही देख रही थी। आस्तिक पियानो पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उसके आंसू बह रहे थे और उंगलियों से खून रिस रहा था। अरुणिमा का दिल कांप गया। चाहे आस्तिक जैसा भी रहा हो या फिर जितना भी क्रूर हो, लेकिन अरुणिमा तो एक सात दिल की इंसान थी और सामने बैठा हुआ ये इंसान उसका पति था। आस्तिक के हाथों से बहता हुआ खून देखकर अरुणिमा बेचैन हो गई और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। आस्तिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो लगभग कुर्सी से नीचे गिरने ही वाला था कि अरुणिमा जल्दी से जाकर उसे थाम लिया। आस्तिक अरुणिमा को लेकर नीचे ज़मीन पर गिर गया। अरुणिमा नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी और आस्तिक अरुणिमा की गोद में सर रखे हुए था। अरुणिमा ने जल्दी से उसके हाथों को थामते हुए कहा, राजा साहब ये क्या किया आपने? एक तो आस्तिक अपने होश में नहीं था और दूसरा उसका दर्द इतना भारी हो रखा था कि उसे अरुणिमा की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। आस्तिक अपने गुजरे हुए कल की दर्द भरी यादों को महसूस कर रहा था। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, लेकिन वो इतने धीरे था कि अरुणिमा उसे समझ ही नहीं पा रही थी। उसे लगा शायद राजा साहब नशे की हालत में कुछ कह रहे थे। अरुणिमा आस्तिक को ऐसे देखकर परेशान हो गई थी। उसने आस्तिक को उठाकर कमरे में ले जाना था और उसका इलाज करना था। आस्तिक का व्यवहार अरुणिमा के लिए जैसा भी रहा हो, लेकिन अरुणिमा अच्छी तरह से जानती थी कि आस्तिक एक बहुत अच्छा भाई था और उससे भी ज़्यादा वो यहाँ का राजा था। सिर्फ अरुणिमा ने अपने लिए ही आस्तिक का ऐसा व्यवहार देखा था, वरना अपने राज्य के लिए वो हमेशा ही समर्पित रहा था। अरुणिमा सिर्फ इंसानियत के नाते आस्तिक की मदद कर रही थी, लेकिन आस्तिक का भारी भरकम शरीर अरुणिमा के अकेले के बस की बात नहीं थी, इसीलिए उसने जल्दी से बाहर से एक सेवक को बुलाया और आस्तिक को कमरे तक पहुंचाया। सुबह का समय महल में था। आस्तिक अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। खिड़की से आई हल्की हल्की धूप की रोशनी उसकी नींद डिस्टर्ब कर रही थी। आस्तिक अपनी आंखों को मसलता हुआ अपनी नींद की दुनिया से वास्तविक दुनिया में आया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। छत को और आसपास की जगह को देखकर आस्तिक को विश्वास हो गया कि वो अपने कमरे में ही है, लेकिन उसे अपने पैरों के पास कुछ भार सा महसूस हुआ। उसका सीधा पैर अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा था। आस्तिक थोड़ा चौंका और फिर उठकर बैठ गया। आस्तिक ने देखा तो उसके घुटनों पर अपना सर रखकर अरुणिमा सो रही थी। अरुणिमा को देखकर आस्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो कल रात के बारे में सोचने लगा। आखिर वो अपने कमरे में कब आया था और फिर अरुणिमा वो उसके पैरों के पास क्यों सो रही थी? आस्तिक ने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की। उसे लगा कि उसे कल रात उस पियानो वाले कमरे से प्रणाली लेकर आई होगी, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था जब आस्तिक बहुत ज़्यादा नशे में होता था और अपने दर्द को कंट्रोल नहीं कर पाता था तो हमेशा वो इस कमरे में सो जाया करता था, लेकिन अगली सुबह उसे प्रणाली या पृथ्वी लेकर आते थे। पर आज यहाँ पर ना तो प्रणाली थी और ना ही पृथ्वी, बल्कि ये अरुणिमा थी। आस्तिक ने परेशान होते हुए अपने बालों में उंगलियों को फंसाते हुए अपने बालों को खींचना शुरू किया और याद करना शुरू किया कि कहीं उसने अरुणिमा को कल रात नशे की हालत में कुछ बता तो नहीं दिया। तभी उसे अपनी उंगलियों में कुछ दर्द का अनुभव हुआ। उसने हैरानी से अपने हाथ को वापस सामने लाकर देखा तो उसकी उंगलियों पर बैंडेज लगा हुआ था। आस्तिक हैरानी से अपने हाथ को देखता रहा कि तभी उसकी नज़र फिर से अरुणिमा पर गई। जरूर ये अरुणिमा ने ही किया होगा। अरुणिमा का मासूम सा चेहरा इस समय आस्तिक की आंखों के सामने था। आस्तिक अरुणिमा की उस मायूस से चेहरे को देख सकता था। शादी वाले दिन उसके चेहरे पर जो चमक थी वो शादी के दूसरे दिन ही गायब हो गई थी। आस्तिक अपनी गहरी निगाहों से अरुणिमा के चेहरे को देखे जा रहा था। आस्तिक का एक मन कह रहा था, ये लड़की थोड़ी अलग है, ये अपनी माँ की जैसी नहीं है। तो वहीं उसका दूसरा मन कह रहा था, बिल्कुल नहीं, ये भी अपनी माँ की तरह ही है। इसका भी काम बस मर्दों को फंसाना ही है। रात का हैंगओवर अभी भी आस्तिक के सर पर था। उसने कस के अपने हाथों से अपने सर को दबाया, पर उसकी निगाहें अभी भी अरुणिमा के ऊपर ही थी। बाहर से आई हुई हल्की हल्की धूप अरुणिमा के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा सोने से चमक रहा था। उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था जिससे वो धीरे धीरे सांस ले रही थी। बंद आंखों में घनी घनी पलकें और बालों की एक लट जो उसके चेहरे पर आते हुए बार बार उसकी नींद